जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य की विशेष घटना। ये कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक महात्म्य की पद्म पुराण में 5 कथाएं हैं। उनमें से जो पहली कथा है तो आज बात हुई थी सस्वरूप प्रभु से तो उन्होंने सुझाव दिया कि पहली कथा जो सत्यभामा के पिछले जन्म की कथा है तो उसे हम सुनेंगे। वैसे मैं कई बार सुना चुका हूँ लेकिन कथा जो है ऐसी दिव्य है कि जितने बार सुने और जितने बार सुना है उतना ही रस उसका मिलता है ना। तो ये बहुत मतलब दिव्य है कथा। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये घटना उस समय की है जब भगवान कृष्ण द्वारका में हैं। और द्वारका में आप लोग जानते हैं कि भगवान की कितनी पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 16108 पत्नियां हैं, है ना। और भगवान प्रत्येक पत्नी के साथ रहते हैं, अलग अलग महल हैं, है ना। और नारद जी आते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। और नारद जी की इच्छा जिस महल में जाने की होती है उस महल में चले जाते हैं और भगवान से मिल लेते हैं कोई है? मतलब समस्या नहीं है कि किस महल में जाएं या इस महल में ना जाएं, किसी महल में जाएं और भगवान से जो है, मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो इस बार जो है नारद जी आए सत्यभामा के महल में, सत्यभामा के महल में भगवान कृष्ण से बातचीत करके और बिंदा लेके चले गए। तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोले। और सत्यभामा को क्या लग रहा है, प्रत्येक पत्नी को लगता है कि भगवान तो मेरे घर में है, है ना, नारद जी भी आए मेरे घर में, है ना, और किसी पत्नी के साथ नहीं है, भगवान मेरे साथ है। तो सत्यभामा हर्ष से प्रसन्न मुख होकर के श्री कृष्ण से बोली, श्रीहापतिम मथा मंत्र गते देवर्षि सत्तमे हर्षोत्फुल्ला नना सत्या वासुदेवम तव तदा ब्रवीत। हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हो गए। कैसे आपकी पत्नी बनी और एकमात्र प्रिया मैं ही हूँ आपकी, है ना, तो मैं धन्य हूँ, मेरे माता पिता धन्य हैं। धन्यास्मि कृत कृत्यास्मि सफलम जीवितम मम मज्जन्मनि निदाने चा धन्यो तो पितरो मम। जिन्होंने मेरी जैसी सुंदर कन्या को जन्म दिया कि 16,000 रानियों में से मैं आपकी एकमात्र प्रेयसी बनी हूँ। यो मैं यो माम त्रैलोक सुभगाम जनयामास तुर्ध्रुवम षोडशस्त्री सहस्राणाम वल्लभाहम यतस्तव। मैंने विधि पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वो कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया। कल्प वृक्ष भी नारद जी को दान किया था, आपको भी दान किया था नारद जी को, तो ये मेरा सौभाग्य है। यस्मान् मयादि पुरुषा कल्प वृक्ष समन्वितः यथोक्त विधिना सम्यक् नारदाय समर्पितः। वो कल्प वृक्ष मेरे घर में है जिसकी बात भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते, क्या चीज होती है, है? प्राप्त करना तो बहुत दूर है कल्प वृक्ष को, उसकी तो बात तक नहीं लोग जानते पृथ्वी में, वो मेरे घर में है। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में है। यद वार्ताम अपि जानन्ति भूमि संस्थान जन्म तवाम स्वयं कल्प द्रुमोगे सदा तिष्ठति चांगड़े। मैं इस समय त्रिलोकपति भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, भगवान से बोल रही हैं। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जो बात मैंने कभी नहीं पूछी आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। त्रैलोक्याधिपतेश्चाहं श्रीपतेरतिवल्लभा अतोहं प्रष्टुमिच्छामि किंचित् त्वं मधुसूदन। यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए। अब क्या विस्तार से कही, जो मैं पूछूंगी, अभी पूछा नहीं है, जो मुझे पूछना है उसका उत्तर विस्तार से आप बताइए। अगर मेरा अनुराग, आपका अनुराग हो मेरे ऊपर जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं, यदि तुम मत प्रिय करह कथयस्वात्र विस्तरम श्रुत्वा तच्चा पुनश्चायम करोमि हितम आत्मनः। तथा आपका और मेरा विरह कल्प पर्यंत भी न हो सके, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिससे क्या होगा कि कल्प भर मैं आपसे दूर न हो, कल्प पर्यंत मेरा और आपका बिछोह ना हो, वियोग ना हो। तो सूत जी सुना रहे हैं ये कथा, पद्म पुराण की कथा है, सूत जी सुना रहे हैं। सत्यभामा का ये वचन सुनकर मंद मंद मुस्काते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के नीचे चले आए। भगवान कृष्ण ने क्या सोचा कि विस्तार से बताना है, एकांत में बताना है, तो कहाँ पर आ गए, कल्प वृक्ष के नीचे आ गए और सेवकों को बाहर ही रोक दिया कि तुम लोग बाहर रहो और किसी को नहीं आने देना है ना। अभी मैं अपनी प्रिया के साथ बात में लगा हूँ, बात कर रहा हूँ, है सेवकों को बाहर ही रोक कर हा? भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए श्री कृष्ण जी बोले। सत्याकरम करे धृत्वा गमत कल्प तरोस्थलम निषिध्यानुचरम लोकम सविलासः प्रियान्वितः प्रहस्य सत्याम आमंत्र प्रोवाच जगतां पतिः तत्प्रीति परितोषोत्थ लसत्पुलकितांगकः। तो श्री कृष्ण जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिया हमको अन्न रानिया नहीं है। भगवान जो है सत्यभामा का हाथ पकड़ के रहे हैं। तुम्हारी भांति प्रिया हमको अन्य रानियां नहीं है, मेरी 16,000 स्त्रियों में तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिया हो। न मैं सुता प्रीतमा काज दन्यान तम्बिनी षोडश स्त्री सहस्राणाम प्रिया प्राण समाह्यसी। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं और इंद्र देव से भी विरोध किया, युद्ध किया तुम्हारे कारण। तो तुमको चाहिए था कल्प वृक्ष, तो इंद्र ने विरोध किया, देवताओं ने विरोध किया, तो इंद्र से और सब देवताओं से मैंने युद्ध करके ये प्राप्त किया कल्प वृक्ष। तो ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि तुम मेरी सबसे अधिक प्रिया हो। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। तो दर्थम देवराजोपि विरुद्धो दैवतः सह त्वया यन् प्रार्थितं कांते शृणु तच्च महाद्भुतम्। जब तुम्हारे लिए कोई चीज ना देने योग्य नहीं है। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग, सुनिए ध्यान से। जब तुम्हारे लिए कोई चीज ना देने योग्य नहीं है, कि मैं कोई चीज ना दूं तुम्हें, ऐसी कोई चीज है नहीं जो तुम्हें ना दूं, कोई काम ना करने लायक नहीं है कि कोई काम ना करूं तुम्हारे लिए, कोई चीज तुम्हें ना दूं, कोई काम तुम्हारे लिए ना करूं, और कोई बात ना कहने लायक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हें ना बताऊं, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं ये कैसे हो सकता है? कि तुम पूछो मुझसे और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं ये कैसे हो सकता है? सत्यभामा कह रहे हैं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर आपका मेरे प्रति प्रेम है। तो भगवान कहते हैं मेरा प्रेम तो तुम्हारे प्रति है ही है पहले से। अधेयमपि वा कार्यम अकथ्यमपि यत् पुनः तत्करोमि कथम प्रश्नम कथयामि न तत्प्रिये। हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो सो पूछो, मैं कहूंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान व्रत या तप किया था जिससे मैं क्या हुई आपकी पत्नी, और वो पत्नी भी कैसी सबसे अधिक प्रिया है ना। पृच्छस्व सर्वं कथये यत्ते मनसि वर्तते दानं व्रतं तपो वापि किं पूर्वं कृतं मया। जिससे इस मर्त लोक में मेरा जन्म हुआ और आपकी अर्धांगिनी बनी, वही बात पूछ रही ना कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा जप तप यज्ञ किया जिससे मेरा इस पृथ्वी में जन्म हुआ और आपकी क्या बनी अर्धांगिनी बनी है और गरुड़ गामिनी बनी। अर्धांगिनी तो सब है लेकिन गरुड़ में बैठ के कौन चलती है मेरे सेवा, मेरे सिवा गरुड़ में बैठ करके कौन चलती है आपके साथ, मैं ही जाती हूँ है ना। तो ये मेरा कौन सा ऐसा गुण हो गया पिछले जन्म में कि जो आपके साथ गरुड़ में बैठ करके चलती हूँ। वीआईपी, वीआईपी पत्नी है, वीआईडब्ल्यू Very important wife. गरुड़ के ऊपर बैठ करके चलती है भगवान कृष्ण के साथ है? तो और आपके साथ स्वर्ग आदि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था? ये ना हम मरते जा मरते भवातीता भवम किले तवार्धांग हरा नित्यम गरुड़ासन गामिनी इंद्रादि देवता वासम आगमंत्या तोया सह अतस्त्वाम परिपृच्छामि किम कृतम तो मया शुभम। मैं पूर्व जन्म में किस स्वभाव की थी और किसकी पुत्री थी जानना चाहिए ना, है सत्यभामा की इच्छा रही जानने की, सही बात है ना। पूर्व जन्म में मैं किस स्वभाव की थी, किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया सो एकाग्रमन होकर सुनो। भवांतरे च किम शीला काचाहम कस्य कन्यका सुनुस्व के मना कांते यथा तम पूर्व जन्मनि। अब कृष्ण से अगर पूछा सत्यभामा ने, तो कृष्ण को कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, समाधि में है सोचने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे कोई ऋषि होते हैं तो उनको जो है 2 घंटा तक समाधि में जाना पड़ता है, तब बताते हैं भी पिछले जन्म में तुम कौन थे, है ना। कृष्ण को सब कुछ पता है ना, और इंस्टेंट है ना। वेदा हम समतीतानी वर्तमान अर्जुन भविष्याणी च भूतानी माम तो वेद न कश्चन, कि मैं सब के भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, सबका, कोई मुझे नहीं जानता, सबको जानता हूँ। तो कृष्ण को जो है कुछ दिमाग में ज़्यादा मंथन करने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन क्या था, है ना। तो कृष्ण जो है बताते हैं सत्यभामा से, एकाग्र मन होकर के सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही सो सब मैं कहता हूँ। सत्यों के बीतने पर त्रेता युग आया था। अभी तो द्वापर युग चल रहा है, भगवान कृष्ण जब सत्यभामा को बता रहे हैं द्वापर युग चल रहा है, द्वापर युग का भी अंत है, द्वापर युग का अंत चल रहा है ना। और पिछले जन्म में तुम इस पृथ्वी में जो थी वो सत्ययुग बीतने पर त्रेता युग आया था, इसका त्रेता युग का प्रारंभ था। अब त्रेता युग का प्रारंभ, तो इसके अंदर पूरा त्रेता युग बीता और द्वापर युग भी बीता पूरा, है ना। मतलब 17,28,000 साल नहीं, त्रेता युग के 12,96,000 साल और द्वापर युग के 8,64,000 साल इतने बीत गए। तो इतना समय पहले कितना हुआ, 12,96,000 साल, मतलब 13,00,000 समझ लो मोटा मोटा, और 8,64,000 ये 21,60,000 साल। उतने समय पहले तुमने जो है तुम जो थी और तुमने जो किया था उसके परिणाम स्वरूप तुम इस समय तुम जन्मे हो। और इस बीच में तुम कहाँ रही वो भी भगवान बताएंगे, इतने समय तक, कितने समय तक, 21,60,000 साल तक तुम कहाँ रही बीच में, इस पृथ्वी में नहीं थी तो कहाँ थी, है ना। तो उसको भी एकाग्र मन होकर के सुनो। सत्यों के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाला देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। तो माया नगरी, तो मेरा जो है विचार है कि वो मायापुर ही है, जो माया नगरी भगवान कह रहे हैं वो मायापुर में ही श्रीवासंगन है, जहाँ आप लोग बैठे हैं श्रीवासंगन तो वहीं की घटना है। तो मायापुर, माया नगरी में तुम जो है अभी भगवान जी ने बता रहे कि तुम कौन थे। भगवान कह रहे हैं कि एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, बहुत ही वेदों के विद्वान सदाचारी, वो नित्य अतिथियों की सेवा करते थे, हवन करते थे, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। कौन? देव शर्मा नाम के ब्राह्मण। कहाँ रहते थे? मायापुर में रहते थे। पुण्यम व्रतम कृतवती तत्सर्वम कथयामि ते आसीन कृत युगस्यान्ते मायापुर्यां द्विजोत्तमहम् आत्रेयो देव शर्मेति वेद वेदांग पारगः आतिथेयोऽग्निशुश्रूषा सौरे व्रते परायणः। अत्रिकुल में पैदा हुए थे, वृद्धावस्था में उनके गुणमती नाम की एक पुत्री हुई, वृद्धावस्था में उनको गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य की भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। अब एक ही घर में पिता भी है, पुत्री भी है और शिष्य भी है, और शिष्य भी दामाद बन गया है, तो एक घर में तीन प्राणी रहते हैं। सूर्यमा राधयन्यत्यं साक्षान् सूर्येवापरः तस्यातीव एवश्चासीन् नाम्ना गुणवती सुता अपुत्रः सः स्वशिष्याय चन्द्रनाम्ने ददौ सुतां तमेव पुत्रवन्मेने सचतं पितृवन्वशी। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वे दोनों कौन? दोनों देव शर्मा और चंद्र शर्मा, गुरु शिष्य है, ससुर दामाद। दोनों कहाँ गए वन में? ईंधन लाने गए। वहां एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। उसी समय अपने ओर आते हुए किसी राक्षस को उन्होंने देखा। राक्षस के भय से दोनों शिथिल हो गए और भागने की शक्ति लुप्त हो गई। तो कदाचित वनम यातो कुशेदमा हरणार्थितो महाद्री पादोपवने चेरेतुस्तावितस्ततः ताव भो राक्षसं घोरम आयांतं तम अपश्यतां भयविह्वल सर्वांगा वसमर्थो पलायितुम्। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरण उपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से और धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको वैकुंठ भवन ले गए। दोनों कहाँ चले गए? वैकुंठ में चले गए। निहतो रक्षसातेन कृतांत समरूपिणा तो तत्क्षेत्र प्रभावेण धर्मशील तया पुनः। उन्होंने जीवन भर मेरी आराधना की थी, इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। जब वे मेरे वैकुंठ में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी हमारे ही जैसे रूपवान हो गए थे। भगवान बता रहे हैं मेरे जैसे रूपवान, मतलब चार भुजाएं वैकुंठ में जो है भगवान के सेवक भी भगवान जैसे चार भुजाएं धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म पीत वस्त्र है ना। तो मेरे जैसे रूपवान वे हो गए थे। कौन? दोनों देव शर्मा और चंद्र शर्मा है ना। मेरे समान रूपवान हो गए, दिव्य चंदन और माला धारण किए हुए मेरे पास ही रहने लगे, मेरे पास रहने लगे। कहाँ पर? वैकुंठ में। ततश्च तो मन भवना धिवासिनो विमानयानो रविवर्चसावभो मत्तुल्य रूपो मम सन्निधान गो दिव्यांगना चंदन योग भोगिनो। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता और पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वो दुखी होकर विलाप करने लगी। अब उसका दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, विलाप करने लगी। ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसा नेतावभौम पितृभर्तृजय दुखार्ता करुणम पर्य देवयन। वो बोली, हा प्राणनाथ, हा पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए? अब मैं आप लोगों के बिना असहाय नहीं हो गई, हाय मैं क्या करूँ। हानातः पितस्त्यक्त्वा गच्छया क्व मया विना बालाहं किं करोमि अद्य ह्यनाथा भवतो विना। अब भोजन वस्त्र से कौन मेरा पालन पोषण करेगा क्या? अब भोजन वस्त्र से मेरा कौन पालन पोषण करेगा? कोई भी कार्य करने का सहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा? कुरु माम स्थिताम गेहे भोजन आच्छादनादि भी अकिंचन कुशलाम स्नेहात पालयिष्यति दूषिताम। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हाय, मैं ऐसी घृणित हो गई, मेरे ऊपर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊँ, मैं बड़ी पापनी हूँ। को यास्यामि को तिष्ठामि किम करोमि यथा घृणम विधात्रा हा हतास्मि अद्य कथम जीवामि बालिशाम। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि कुर्री पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु के झकझोरे से गिरे केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। केले का पेड़ जब गिरता है हवा से तो नीचे से गिरता है पूरा, कोई दूसरा पेड़ गिरता है तो नीचे का हिस्सा बना रहता है, है ना? ऊपर का हिस्सा टूटता, नीचे का हिस्सा कुछ बना रहता है, उसे कहते हैं ठूठ, है ना? कोई भी पेड़ जो है बिल्कुल नीचे से नहीं गिरता, लेकिन केले का पेड़ गिरता है तो पूरे नीचे से गिरता है। तो गुणवती गिरी उस समय कैसे? बिल्कुल नीचे से गिरी, केले के वृक्ष के समान गिरी, है? एवं बहु विलप्यात है कुर्री वे भ्रसातुरा हत भाग्या हत सुखा हताशा हत जीविता। शरणं कुं प्रयाम्यद्य यो मे दुःखं प्रमार्जति पपाति भूमो विकला रंभावात हता यथा। बहुत देर के बाद होश में आई कौन? बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप करके दुख से विकल होते हुए शोक में डूब गई। चिरादाश्वास है सा भूयो विलप्य करुणम बहु निमग्ना शोक जलधौ दुखिता समय वर्तते। तब अपने घर के अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्ध कर्म किया। घर में पैसा भी नहीं था तो सामान ही बेचा उसने, है? और पिता और पति का श्राद्ध किया। सागृहोपस्करान सर्वान विक्रिय शुभ कर्म तन तयाश्चक्र यथाशक्ति पारलोक्याम तथा क्रियाम। और विष्णु भगवान की भक्ति में रत होकर वो शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को भस्म करके उसी पुरी में रहने लगी। अब क्या करती है? विष्णु की भक्ति में लग गई वो पूरी तरह से। तस्मिन्नेव पुरे चक्रे वासं संतृति जीवनी विष्णु भक्ति पराशांता सत्य शौचा जितेन्द्रिया। छोटी कन्या थी, विवाहिता थी, है? और देखो पूरा जीवन उसका क्या हो गया, मतलब तपस्या, है ना? मतलब भगवान विष्णु की भक्ति में लग गई। एक प्रकार से सौभाग्य है भगवान की, जो है ये भी कृपा, कोई देखना चाहे तो भगवान की बहुत कृपा है। अब बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति कुछ भी नहीं है, है ना? और जवानी पूरी जो है मतलब भक्ति में बीत गई, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं, है ना? किस प्रकार से जो है जन्म से मरण पर्यंत वो एकादशी और कार्तिक के व्रत को विधिवत कर दी रही। दो व्रत किए उसने जन्म से मरण पर्यंत। कौन से दो व्रत? एकादशी और कार्तिक करती रही। व्रत द्वयम् तथा सम्यंग आजन्म मरणात् कृतम् एकादशी व्रतम सम्यंग सेवनम कार्तिकस्य। हे प्रिय, ये दोनों व्रत पुत्र संपत्ति देने वाले और मुझे बहुत प्रिय हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण सद्भाव से कह रहे हैं ये दोनों व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। एतन् हृदयद्वयं कान्ते ममातीव प्रियंकरं भुक्तिमुक्तिकरं पुण्यं पुत्रसंपत्तिदायकं। जो मनुष्य कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, यदि बड़े से बड़े पापी हों तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। कार्तिके मासे नित्यं तुलासन्ते दिवाकरे प्रातस्ना संदिते मुक्ता महापातकिनोऽपि च। कार्तिक में स्नान करना प्रातःकाल से पहले बहुत विशेष है। जो लोग कार्तिक में स्नान जागरण दीपदान और तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। चार कार्य है, स्नान जागरण दीपदान और तुलसी वृक्ष की रक्षा। स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिके मास कुर्वन्ती तेनरा विष्णुमूर्तयः। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। सम्मार्जनम विष्णु गृहे स्वस्तिकादि निवेदनम विष्णु पूजाम चके ये कुर्युर जीवन मुक्ता स्तुते नरा। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम का पालन करते हैं वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। क्या समझे, 3 दिन भी अगर नियम का पालन करे तो देवताओं का पूज्य बन जाएगा, है ना। तब भला जिन्होंने जन्म भर कार्तिक का व्रत किया है उसका क्या कहेंगे, जीवन भर किया है। इत्थं दिनत्रयमपि कार्तिकेये प्रकुर्वते देवानामपि ते वंद्या किंचैवा जन्मतः कृतम्। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। इत्थं गुणवती सम्यग् प्रत्यब्दं प्रतिनिभूत नित्यं विष्णु प्रपूजायां भक्त्या तत्परमानसा। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई, वो नियम नहीं अपना छोड़ रही है। धीरे धीरे, क्योंकि ज्वर से पीड़ित है, बुखार है, ऐसे में धीरे धीरे गंगा स्नान को गई और गंगा जी का पानी बहुत ठंडा है ना, धीरे धीरे गई। कदाचिन सारोजा साथ है कृषांगे ज्वर पीड़िता स्ना तुम गंगाम गता कांते कथंचिन छन के सदा। कृषांगी यानी बहुत दुर्बल हो गई है ना, वो जल में स्नान करने को उतरी तो ठंड से कांपने लगी है ना। उस बेहाल अवस्था में उसने आकाश से आते हुए विमान को देखा। अब देखो गिर रही है गंगा जी के जल में और आकाश से क्या देखा उसने, विमान आ रहा है। यावन जलांतरगता कंपिता सीत पीड़िता तावत सा बिहवला पश्यन विमानम प्राप्त मंबरा। उस पर विष्णु रूप धारण करने वाले पार्षद हैं, विष्णु रूप धारण करने वाले संघ चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले विष्णु के पार्षद उस विमान में आए हैं उसको लेने के लिए। गरुड़ के ध्वजा से युक्त है विमान, अप्सराओं से सुशोभित है। उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चमन डुलाते हुए विष्णु के पार्षद उसे वैकुंठ में ले गए। हरिओ संक चक्र गदा पद्मे रायुधे रूपलक्षिता विष्णु रूपे धरा सम्यं वैनते ध्वजांकितम आरुह्य व्योम यानम ताम अप्सरो गण से विताम चामरेर विजमानाम ताम वैकुंठम मनगणानयन। उस विमान में बैठी हुई वो प्रज्वलित अग्नि के समान लगती थी, इतना दिव्य रूप हो गया अग्नि के समान, जैसे प्रकाशमान उसका शरीर हो गया। विमान में बैठी है, वो शरीर छोड़ दिया उसने गंगा जी में, तो वो शरीर तो गंगा जी में बह गया जो भी हो, उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया अग्नि के समान प्रकाशमान, और वो बैठी है और विष्णु के पार्षद उसको चमन डुला रहे हैं और वो वैकुंठ में चली गई। इस प्रकार वो कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। अथ दातन विमानस्था जलदग्नि शिखो शिखोपमा कार्तिके व्रत पुण्येन मत्सान्निध्यं गता भवन। बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, बहुत समय के बाद यानी पृथ्वी के कितने साल बीत गए, 21 लाख 60 हजार साल बीत गए, तो बहुत समय हो गया। वो मेरे साथ रही, कहाँ पर रही, वैकुंठ में रही, पृथ्वी के बहुत समय बीत गया, 21 लाख 60 हजार साल, पूरा त्रेता युग पूरा द्वापर युग बीत गया, और ब्रह्मा आदि देवताओं ने फिर मुझसे प्रार्थना की है? तो मैं इस लोक में आया तब मेरे साथ मेरे गण भी आए वैकुंठ से। अथ ब्रह्मादि देवानां यदा प्रार्थनया भवम् आगतो हम गणा सर्वे आयातास्तेपि मया सह। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं, जितनी यदुवंशी हैं सब मेरे गण हैं। कहाँ से आए हैं? वैकुंठ से आए हैं। देव शर्मा ब्राह्मण, जो इस जन्म में तुम्हारा पिता था, इस जन्म में वो सत्राजित यादव हुआ है तुम्हारा पिता। इस जन्म में जो तुम्हारा पिता था देव शर्मा, हाँ, इस जन्म में भी वो तुम्हारा पिता हुआ है। क्या नाम है? सत्राजित यादव हुआ है। एते ही यादवा सर्वे मनगणा एव भामिनी पिता ते देव शर्मा भूत सत्राजित विदो याथ। और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए हैं। क्या समझे? अक्रूर, किस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा है और तू वही दुखिया गुणवती है, उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्रिया हुई हो। यस चंद्र शर्मा सो क्रूरस तुम सा गुणवती स्वभाव कार्तिके व्रत पुण्येन बहुमन प्रीतिदायिनी। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, कार्तिक में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर क्या लगाया था, तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में मैंने कल्प वृक्ष लगाया है। पिछले जन्म में जो तुमने किया, इस जन्म में मैंने वो तुम्हारे लिए किया। कैसा अद्भुत फल है, तुमने मेरे मंदिर के बाहर तुलसी का बगीचा लगाया तो मैंने तुम्हारे घर के आंगन में कल्प वृक्ष लगाया। मद्वार यत्वया पूर्वम तुलसी वाटिका कृता तस्मादयम कल्प वृक्ष तवांगणे गतः शुभे। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीप दान किया था, एक तो तुलसी की सेवा, दूसरा दीप दान, तो जो दीप दान किया उसी के पुण्य से इस समय तुम्हारी देह में शोभा है और घर में लक्ष्मी है, सौंदर्य और संपत्ति दो चीजें कैसे मिली, दीपदान के द्वारा। तुम्हारा जो सौंदर्य है और तुम्हारी जो संपत्ति है वो दीपदान के कारण है, कार्तिक में जो तुमने दीपदान किया है। कार्तिके दीप दानम चा त्वया यत्तु कृतं पुनः त्वद्गेहे संस्था चा शुभा तस्मान् लक्ष्मी स्थिरा भवन। उस समय तुमने जो व्रत पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, तुमने विष्णु को ही अपना पति मान करके और अपना फल अर्पण किया था, जितना भी तुमने किया शुभ कर्म उसका फल तुमने अर्पित किया विष्णु को पति मान करके, उसी के फल से इस जन्म में तुम मेरी पत्नी हुई हो। हरि बोल, हरि बोल। यच्चामृतादिकं सर्वं विष्णवे भर्तृरूपिणे निवेदितवति तस्मान् मम भार्या त्वं मां गता। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया, क्या धर्म से लेकर के मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया, इसी से कभी भी मेरा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। तुमने छोड़ा नहीं, शरीर छोड़ दिया लेकिन व्रत नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भगवान कह रहे हैं। आजन्म मरणात् पूर्वम यत् कृतम् कार्तिके व्रतम् कदाचिदपि तेन त्वम् मन् वियोगम् न यास्यसि। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे वे सब मेरे ही पास रहेंगे। हरि बोल। और तुम्हारे समान प्रिय होंगे, तुम्हारे समान प्रिय होंगे। एवं ये कार्तिके मासी नरा व्रत परायणा मत सान्निध्यम गतास्ते भी प्रीतिदास तुम यथा मम। नाना प्रकार के यज्ञ दान व्रत और तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, क्या समझे भगवान क्या करें, नाना प्रकार के यज्ञ दान व्रत और तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक व्रत का 16वां अंश भी नहीं होता है। कार्तिक व्रत का 16वां अंश, 16वां अंश का मतलब 1/16 कितने परसेंट हुआ, 16वां अंश 1/16 कितना परसेंट हुआ, 6%। 6% भी नहीं होता कार्तिक में जो नियम का पालन किया जाए, है ना, तो वो उसकी तुलना में बाकी समय में आप जो कुछ करते हैं तो 16% भी नहीं है, वो नहीं 6% नहीं, 6% भी नहीं है, 16वां अंश है ना। रुपये में एक आना बोलते हैं ना, रुपया में एक आना भी नहीं है, अभी आजकल तो रुपया आना नहीं चल रहा, वो उस तरह का है, तो 6% भी नहीं है, सोचिए। यज्ञदान व्रत तपः कारिणो मानवा खलु कार्तिके व्रत पुण्यस्य नाप्नुवन्ति कलामपि। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। इत्थम निशम्य भवनाधिपते स्तदानी प्राग जन्म पुण्य भव वैभव जाते हर्षा विश्वेश्वरम त्रिभुवने के निदान भूतम कृष्णम प्रणम्य वचनम निज गाद सत्या। तो बहुत सुंदर हमने कथा सुनी। अब इस विषय में आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को बताया, तो बताया कि एक ब्राह्मण थे, कहां पर थे वो ब्राह्मण, मायापुर, मायापुर में ब्राह्मण थे, उनका क्या नाम था, देव शर्मा, उनकी पुत्री का नाम क्या था, गुणवती, उनके शिष्य का नाम था चंद्र शर्मा, है ना। तो आगे चल करके अपनी पुत्री गुणवती का विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। फिर आगे चल करके दोनों ससुर दामाद जंगल में गए ईंधन लाने के लिए, और वहां पर क्या हुआ, एक मार डाला। लेकिन अपने विष्णु भक्ति के प्रभाव से वो कहाँ चले गए, वैकुंठ में, भगवान के साथ रहने लगे, है ना। और गुणवती ने जब सुना तब उसका संसार में कोई नहीं था, तो बहुत शोक किया, घर का सामान बेच करके अपने पति और पिता का श्राद्ध किया। उसके बाद फिर जीवन भर दो व्रत किए उसने, क्या, कार्तिक व्रत और एकादशी व्रत। और भगवान ने क्या कहा कि ये दो व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं, ये वैष्णव व्रत है। दूसरे व्रत जैसे कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई मंगलवार का, कोई शुक्रवार का, कोई गुरुवार का, ये वैष्णवों की व्रत नहीं है, है ना, है ना। वैष्णवों की व्रत कौन से हैं, एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत, और बाकी जो है रामनवमी में उपवास करना, जन्माष्टमी, ये वैष्णवों के व्रत हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ये दो व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं, है ना। और गुणवती ने जो है मन लगा करके इन व्रतों का पालन किया, है ना। और आगे चल करके देखो, मतलब जवान थी, पूरी जवानी है किसमें बीती, तपस्या में, मतलब भक्ति में, इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं, है ना। एक प्रकार से भगवान की कृपा, ऐसे तो लगता है भाई ये तो बड़ा मतलब दुर्भाग्य है ना, अशुभ है, लेकिन वो भी जो है कृष्ण की कृपा से क्या हो गया, उसके लिए बहुत सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो उसने क्या किया, बस मतलब भगवान को पति रूप मान करके और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो व्रत करने लगी, है ना। और आगे चल करके वृद्धावस्था आ गई है, और बुखार भी आ गया है, रोग भी आ गया, और कार्तिक का महीना चल रहा था है, तो आजकल सवेरे ठंड तो होती है ना है। तो भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा, और धीरे धीरे जा रही है बुखार की हालत में, है ना। और जैसे ही गंगा जी में पैर रखा ठंड के मारे, क्या हुआ, कांपी और गिरी, और देखा आकाश में विमान आया, तो उसको शरीर छोड़ दिया, दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया है, और विमान में बैठ करके भगवान के पास चले गए, है ना। और उसके बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो तब तक इस पृथ्वी में कितना समय बीत गया था, 21,60,000, द पूरा सत्ययुग और पूरा त्रेता युग, है ना। अगर ऐसे देखा जाए सत्ययुग और त्रेता, तो त्रेता कलयुग का 3 गुना है, और सत्ययुग नहीं, त्रेता द्वापर, त्रेता द्वापर ना, हाँ, त्रेता युग और द्वापर युग, तो द्वापर कलयुग का 2 गुना है, और त्रेता कलयुग का 3 गुना है, है ना। तो द्वापर 2 कलियों के बराबर है, और त्रेता 3 कलियों के बराबर है, तो द्वापर और त्रेता मिलकर के कितने कलयुग हो गए, 5 कलियुग, 5 कलियुग, और एक कलयुग कितने का है, 432,000 साल का है, है ना। इसे 5 से गुणा करें, 432,000 में तो 20 लाख तो वो हो गए, और 32 × 5 160,000 साल, है ना। 21,60,000 साल का समय पृथ्वी में बीत गया, और वो तब तक कहाँ रही गुणवती, वैकुंठ में रही, भगवान के साथ रही, है ना। और जब भगवान आए तो वैकुंठ से अपने सब गणों को भी अपने साथ लाए, है ना। तो वहाँ पर भी भगवान के साथ वो रही, पत्नी बन करके रही है, और जब यहाँ आई पृथ्वी में तो भी भगवान की पत्नी बनी, है ना। तो भगवान ने क्या बताया, भगवान ने क्या बताया कि तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी की वाटिका लगाई, उसका क्या फल हुआ तुम्हें, मैंने तुम्हारे घर के आंगन कलवृक्ष लगाया, है ना। और तुमने जीवन भर कार्तिक व्रत और एकादशी का व्रत किया, उसका फल क्या मिला तुमको, कभी भी, हाँ कभी भी तुम मुझसे दूर नहीं रहोगी, वियोग नहीं होगा, है ना। और तुमने मुझे पति मान करके तुमने सब व्रत किए थे, मुझे अर्पित किए थे, इस कारण से तुम क्या बनी, मेरी पत्नी बनी। और क्या बताया भगवान ने, दीपदान किया कार्तिक में, उसका क्या है फल, सौंदर्य और संपत्ति, सौंदर्य और संपत्ति, है ना। तो बहुत इसका जो है मतलब लाभ है। तो आज की जो है बहुत सुंदर कथा हुई, तो ये जो है मतलब कथा भुलाने के लिए नहीं है, है ना। इसको आप बताइए, जारे देखा तारे कहो है, कृष्ण उपदेश, तो ये जो उपदेश है ये कथा है कार्तिक महात्म्य की, आपको बताना चाहिए सबको, ठीक है। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हितग्रेस जितेंद्रदास प्रभु जी का, बहुत सुंदर कार्तिकेय लीला सत्य भामा की आप लोगों ने सुनी, बड़ा आनंद आया। प्रभु जी ने पूरा लाइव दिखा दिया है कि किस प्रकार पूर्व जन्म में सत्य भामा कौन थे, किस घर में पैदा हुए थे और बाद में वो कैसे सत्य भामा के रूप में भगवान की पत्नी बनी। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं राधा दामोदर भगवान से, प्रभु जी दीर्घायु हों, हम भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, हम सभी भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती रहे। अब सबसे प्रार्थना है, कृपया आप शांतिपूर्वक बैठे रहिएगा। प्रभु जी अभी दामोदर अष्टकम गाएंगे, प्रभु जी दीपदान करेंगे, पहले सब लोग बैठ करके दामोदर अष्टकम गाएंगे और जब प्रभु जी दीपदान करेंगे उसके बाद सब लोग दीपदान करेंगे, कोई भी अभी बाहर नहीं जाएगा दीप लेने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
श्री श्री सदा दामोदर भगवान की। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदा बियो लोक लाधव मानम्। यशोदा बियो लोक लाधव मानम्। परामृष्ट मात्यंत तो द्रुत गोप्या। परामृष्ट मात्यंत तो द्रुत गोप्या। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्ममृजन्तं करम्भोज योग्मेन सातंक नेत्रं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्ममृजन्तं करम्भोज योग्मेन सातंक नेत्रं। मुहु श्वास कंपत्रि रेखांक कंठ। मुहु श्वास कंपत्रि रेखांक कंठ। तित ग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धं। चित ग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धं। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषम निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीय सीतागेषु भक्तिर्जिता त्वम् तदीये सीतागेषु भक्तिर्जिता त्वम् पुनः प्रेमतास्तं स तामृति वन्दे पुनः प्रेमतास्तं स तामृति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिम्ब न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपि जय हो वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिम्ब न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपि इदं ते वपूर्णात् गोपाल बालम् जय हो इदं ते वपूर्णात् गोपाल बालम् सदा मे मनास्यामि रास्तां किमान्य सदा मे मनास्यामि रास्तां किमान्य इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलवृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रे स गोप्यादं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलवृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रे स गोप्यान् मोश्चुम्बितां बिम्ब रक्ताधरं मे मोश्चुम्बितां बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्य विरास्ताम् अलं लक्षलाभे मनस्य विरास्ताम् अलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर आनन्द वेष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जालाधिमग्नम् जय हो नमो देव दामोदर आनन्द वेष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जालाधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो ग्रहणे समामज्ञम एध्यक्ष दृश्याम। जय हो ग्रहणे समामज्ञम एध्यक्ष दृश्याम। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते व्यान्वत् त्वया मोचिता भक्ति भाजो कृतो च। जय हो कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते व्यान्वत् त्वया मोचिता भक्ति भाजो कृतो च। जय हो तथा प्रेम भक्तिम स कामे प्रयाच। तथा प्रेम भक्तिम स्व कामे प्रयाच। न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे है। न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे है। नमस्ते स्तु दामने स्फुर दीप्ति धामने तदीयो दरायाथ विश्वास धामने। नमस्ते स्तु दामने स्फुर दीप्ति धामने तदीयो दरायाथ विश्वास धामने। नमो राधिकाय तो दिए प्रियाय। नमो राधिकाय तो दिए प्रियाय। नमो नंत लीलाय देवाय तोभ्यं। नमो नंत लीलाय देवाय तोभ्यं। जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर। नृत्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री सदा दामोदर भगवान की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।